آگے آسمان سے متعلق والسماء ذات الرجع. اب یہ تین لفظ ہیں مگر ان تین لفظوں میں کیا حقیقتیں ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے. آسمان کے متعلق ایک عام تصور تو یہی ہے کہ بھائی اوپر جو نیلا رنگ نظر آتا ہے. قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو سما کا لفظ ہے نا یحتمل الفلک, جو آسمان ہے نا تو اس کے معنی پہ یہ لاگو ہو سکتا ہے. وجہت العلو, اوپر کی سمت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید نے اس کا ایک عجیب تصور پیش کیا. یہ نہیں کہا کہ آسمان سے بارش برستی ہے والسماء ذات المطر. اگر یوں کہہ دیتے تو بات پھر بھی ٹھیک ہوتی مگر بات ادھوری ہوتی, کامل نہ ہوتی. قرآن مجید نے کہا والسماء ذات الرجع. رجع رجوع سے ہے, لوٹانا. اس کا انگلش میں ترجمہ یوں بنے گا اسکائی ہیز دی کیپیبلٹی ٹو ریٹرن. اسکائی ہیز دی کیپیبلٹی ٹو ریٹرن, آسمان میں لوٹانے کی صلاحیت ہے. تو ایک عجیب سی بات ہے کہ جی آسمان کے بارے میں یہ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ آسمان میں لوٹانے کی صلاحیت ہے. آج سائنس نے یہ ثابت کیا کہ بعض انسان کی فائدے مند چیزیں ہیں جو یہاں سے باہر جانا چاہتی ہیں, یہ ان کو واپس لوٹاتا ہے, اور باہر خطرناک چیزیں ہیں جو اندر آنا چاہتی ہیں انسان کے لیے, یہ ان کو باہر لوٹاتا ہے. تو یہ انسانوں کے لیے درمیان میں ایک شیلڈ کی مانند ہے, تہوں کی مانند ہے. باہر سے آنے والی نقصان دہ چیزوں کو یہ باہر بھیجتا ہے اور اندر سے فائدہ مند چیز باہر جانے والی چیزوں کو یہ واپس لوٹاتا ہے. مثال کے طور پر آگے دیکھیے, زمین کے گرد مختلف تہیں ہیں, تہیں سفیر ہیں. ایک کو ٹروپوسفیر کہتے ہیں. یہ ٹروپوسفیر کیا ہے؟ یہ ہم دیکھتے ہیں زمین کے گرد جو ذرات ہیں, جو جہاں ہوا ہے, اس کو ٹروپوسفیر کہتے ہیں. یہ ٹروپوسفیر تین کام کرتا ہے. ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ سمندر سے جو بخارات اٹھتے ہیں, یعنی گرم ہوا اوپر اٹھتی ہے, تو وہ پانی اوپر جا کر وہاں کی ٹھنڈ کی وجہ سے وہ قطرے بن جاتے ہیں, اور پھر ہوا ان بادلوں کو دھکیل کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لے جاتی ہے اور وہاں بارش برساتی ہے. پانی سمندر سے اٹھا اور بارش برسائی گئی پہاڑوں کی چوٹیوں پر, اور جب وہاں برستی ہے تو ٹھنڈ کی وجہ سے وہ سنو ہوتی ہے, تو برف کی تہیں چڑھ جاتی ہیں. تو گویا وہ پانی سٹوریج کے اندر سٹور کر لیا گیا پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی شکل میں. اب وہ پانی آہستہ آہستہ پگھلتا ہے اور وہ ندی نالوں کی شکل میں, دریاؤں کی شکل میں, پھر پوری زمینوں کو سیراب کرتا ہوا, ہمیں پھل دیتا ہوا, پھول دیتا ہوا, سبزیاں دیتا ہوا, بالآخر وہ واپس سمندر میں لوٹ جاتے ہیں. اگر وہیں سے بادل اٹھ کر وہیں بارش ہوتی تو ہمیں کہاں سے رزق ملتا؟ واہ میرے مالک, آپ کتنے بڑے ہیں, کتنے عظیم ہیں کہ پانی سمندر سے لیا مگر بادلوں کو ہواؤں نے دھکیل کے پہاڑوں تک پہنچایا, وہاں جا کے برف بنائی. اگر فقط پانی بہ کے چلا جاتا تو چلو گرمیوں میں تو یہ سب کچھ ہوتا, سردیوں میں ہم کیا کرتے, پانی کی کمی ہو جاتی. نہیں, اس کو برف کی شکل میں سیو کر لیا تاکہ سارا سال تھوڑی تھوڑی برف وہاں سے پگھلتی رہے اور آگے تھوڑا تھوڑا پانی جاتا رہے. ایک ہی وقت میں آتا تو ہمارے علاقوں میں تو سیلاب آ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واٹر سائیکل بنا دیا, یہ پانی کا سائیکل ہے. تو ایک تو یہ ٹروپوسفیر یہ کام کرتا ہے کہ بارش کو لوٹاتا ہے اور وہ بارش کا پانی انسانوں کے فائدے کے لیے اس کی زمینوں کو سیراب کرتا ہوا, گلشنوں کو آباد کرتا ہوا واپس سمندر میں لوٹ جاتا ہے. दूसरा काम यह करता है कि हमें जो जमीन के ऊपर यह रोशनी नजर आ रही है ना, यह मिट्टी के छोटे छोटे जर्रात की वजह से नजर आ रही है। आप हैरान होंगे कि जो खलाबाज स्पेस में जाते हैं ना, तो उनको हर तरफ अंधेरा नजर आता है। क्यों? कि सूरज की रोशनी तो गुजर रही होती है, मगर उनको रिफ्लेक्ट करने वाली कोई चीज नहीं होती, तो उनको गुप्त अंधेरा नजर आता है। खला गुप्त अंधेरे की मानिंद है। जमीन पर रोशनी कैसे? कि जो सूरज की रेज आती है ना, वो छोटे छोटे जर्रों से रिफ्लेक्ट होती हैं, और रिफ्लेक्ट होके ये सूरज की रोशनी आज हम यहां देखो बगैर बल्ब के या किसी और के आराम से दिन की रोशनी में बैठ के काम कर सकते हैं। वाह मेरे मौला, आपने मिट्टी के छोटे छोटे जर्रात को भी इंसानों की रोशनी के लिए इस्तेमाल फरमा लिया। अगर ये मिट्टी के जर्रात ना होते तो दिन की रोशनी ना होती, इंसान को दिन और रात में एक जैसा अंधेरा नजर आता। तो ट्रोपोस्फीयर दूसरा काम यह करता है, और तीसरा काम यह करता है कि जमीन से जो हरारत है ना, वो बाहर निकलना चाहती है। अगर बाहर निकल जाए तो जमीन का तो टेम्परेचर ही ठंडा हो जाता, जैसे खाना थोड़ी देर रख दें, थोड़ी देर के बाद ठंडा, इसलिए कि उसकी हरारत बाहर चली गई। अगर इस तरह होता तो जमीन का तो दर्जा हरारत बहुत ही ठंडा हो जाता। नहीं, ये ट्रोपोस्फीयर उस थर्मल वेव्स को वापस लाता है। जैसे खाने को ढांप के रख दें तो खाना गर्म रहता है। तो अल्लाह ताला की शान के इंसान के लिए जो कंफर्टेबल टेम्परेचर है, ये ट्रोपोस्फीयर उस कंफर्टेबल टेम्परेचर को सलामत रखता है। तो तीन काम ये ट्रोपोस्फीयर करता है। तो तीनों चीजें इंसान के फायदे की थी। पानी फायदे का था, बारिश की सूरत में वापस लौटा दिया। हरारत फायदे की सूरत में थी, टेम्परेचर की सूरत में वापस लौटा दिया। रोशनी फायदे की सूरत में थी, उसको रोशनी की सूरत में वापस लौटा दिया। फिर उसके बाद आयोनोस्फीयर आता है। ये वो सफीयर है जहां से जाकर हमारे ये जितने टेली कम्युनिकेशन है उसी के जरिए से हो रही होती है। रेडियो वेव्स और टीवी वेव्स और फलां वेव्स, वो सारी की सारी वेव्स जो होती हैं वो यहीं से लौट के वापस आती है। अब हम एक इधर बैठे हैं मशरक में, एक मगरब में, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्यों? इस आयोनोस्फीयर के जरिए आपस में कम्युनिकेशन हो रही है। कहीं एक जगह के मैच दूसरी जगह देखे जा रहे हैं, कहीं एक जगह के हालात दूसरी जगह देखे जा रहे हैं, वो तमाम कम्युनिकेशन वो इसी आयोनोस्फीयर के जरिए से हो रही है। फिर उसके बाद वैन एलन बेल्ट हैं। ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के फायदे के लिए। फिर उसके साथ मैग्नेटोस्फीयर है। ये एक ऐसा है कि जो बाहर से आने वाले जो मेट्रॉइड है ना, यानी छोटे छोटे जर्रे हैं जिनकी हर वक्त जमीन पर बारिश हो रही है, जैसे पानी की बारिश होती है। यूं समझिए कि बाहर की कायनात से जमीन की तरफ छोटे छोटे जर्रात बड़ी तेजी से आते हैं। हम जब कभी रात को आसमान में देखें ना, तो हमें रोशनी के सितारे नजर आते हैं। वो सितारे नहीं होते, वो रोशनी के छोटा सा जर्रा होता है, मगर इतनी तेजी से चलता है कि 150 किलोमीटर फी सेकंड, 150 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से जब वो चलता है, तो उसकी जो मास होती है ना, वो सारी की सारी एनर्जी में तब्दील हो जाती है, एक्सप्लोजन होता है। तो हमें नजर आता है सितारा छूटा, हालांकि छोटा सा जर्रा होता है, तो वो मेट्रॉइड है। छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, वो आते हैं। अगर जमीन के गिर्द ये हिफाजती तय मैग्नेटोस्फीयर की ना होती, तो टनों के हिसाब से पत्थरों की बारिश रोजाना जमीन के ऊपर होती। हम मीठी नींद सोए होते हैं, हमारा परवरदिगार जाग कर हमारी हिफाजत कर रहा होता है। उसने मैग्नेटोस्फीयर बना दिया कि मेरे बंदों के लिए यह चीज नुकसानदेह है, इसलिए इसको वापस धकेल दो। तो यह मैग्नेटोस्फीयर उन तमाम मेट्रॉइड को पीछे धकेल देता है। अब देखिए कितना एग्जैक्ट लफ्ज इस्तेमाल किया, वस्समा इजातिल मतर, नहीं कहा कि भाई आसमान बारिश बरसाता है, नहीं, वस्समा इजातिल रज, आसमान में लौटाने की सलाहियत है। तो गोया ऊपर तहें हैं हिफाजती, फायदेमंद चीजों को इंसान की तरफ लौटाती हैं और नुकसानदेह चीजों को इंसान से बाहर की तरफ लौटाती। वाह मेरे मालिक, कुरान मजीद के तीन लफ्जों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म का इतना बड़ा समुंदर भर दिया। जिस किताब के तीन लफ्जों को समझने के लिए इतने ही इल्म की जरूरत हो, पूरी किताब को समझने के लिए कितने इल्म की जरूरत। लिहाजा कुरान मजीद इल्म का सबसे बड़ा माखज है, जहां से इंसान जिंदगी की हिदायत और रहनुमाई के लिए इल्म हासिल कर सकता है। तो नतीजा यह निकला। जी खड़ी
नतीजा मंदरजा बाला मिसालों से साबित हुआ कि कुरान मजीद सबसे बड़ा माखज़ इल्म है। यह ऐसी कामिल किताब है जो इंसान को जिंदगी के हर कदम पर रहनुमाई अता करती है, इंसानियत को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाने वाली किताब, भूले भटकों को सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब, कारे मुजिलत में गिरे हुओं को औज सुरैया पर पहुंचाने वाली किताब। यह इंसानियत के लिए दस्तूर हयात है, इंसानियत के लिए मंशूर हयात है, इंसानियत के लिए दाबता हयात है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए आब हयात है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस किताब की तालीमात से फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। तो ये आज हमारा टॉपिक पहला था कि माखज़ इल्म कितने हैं। उनमें से पहला माखज़ कुरान मजीद है। अब दूसरा जो है हदीस मुबारक है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप उस रात को थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक दे दें। शेड्यूल के मुताबिक क्या होना था आज? जी थोड़ी देर की ब्रेक आप साथ ले लीजिए, फिर हम अगले पीरियड में इंशाल्लाह दूसरे माखज से आगे शुरू कर देंगे। जरा तेजी से कवर कर लेंगे।